ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 5 अध्याय 10। अध्याय का नाम है जड़ भरत तथा महाराज रहुगण की वार्ता और श्लोक संख्या 3। तो हमारे पीछे आप सब दोहराएंगे अथह अथ त ईश्वर बच सोपालंभ उपाकर्ण्यो उपाय तुरियात संकित मनसत्वं विज्ञापयां बभूबुः। अथ ते ईश्वर वचः सोपालंभम उपाकण्ड्य उपाय तुरियात संकित मनसस्तम विज्ञापया बभूव। शब्दार्थ अथ इस प्रकार ते कहार ईश्वर वचः अपने स्वामी राजा रहुगण के शब्द स उपालंभम उलाहना पूर्वक उपाकन्या सुनकर उपाय साधन तुरियात चौथे से संकित मन ससंकित मन वाले तमह उसको राजा को विज्ञापयाम बभूव सूचित किया। अनुवाद और तात्पर्य अवेचणार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, जब कहारों ने महाराजा रहुगण की धमकी सुनी तो वे उसके दंड से अत्यंत भयभीत हो गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे। तात्पर्य, राजनीति शास्त्र के अनुसार राजा अपने अधीनस्थ लोगों को कभी समझाता है, कभी डराता है, कभी फटकारता है और कभी पुरस्कृत करता है। इस प्रकार वह उन पर शासन करता है। कहार समझ गए कि राजा क्रुद्ध है, अतः वह उन्हें दंडित करेगा। तात्पर्य समाप्त हो गया। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानं जनसलाकया चक्षु उन्मेलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरु न वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रशभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरु दीन तारणं। भूतैरा महादेवे इमां पुरा विभो निरमाय सेते यदमुष पुरुष भुंते गुणान सोडस सोडसात्मकं सो अलंकृ शिष्ट भगवान वचांसि मे। सोवलंकर शिष्ट भगवान बचन सीमे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आप सभी का वृंदावन धाम में और विशेष करके श्रीमद् भागवत कथा सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये जो प्रसंग चल रहा है जड़ भरत तथा महाराज रहुगण की वार्ता। तो ये वार्ता कहां संपन्न हो रही है? तो इच्छुमती नदी के किनारे पे हो रही है। इच्छुमती हो सकता है बिहार साइड में कहीं हो सकती है। तो महाराज रहुगण सिंधु सौवीर देश के जो है राजा थे, जो बिल्कुल पश्चिम के कॉर्नर पे है, और उन्होंने सुना था कि भगवान का प्राकट्य हो चुका है, इसलिए भगवान के दर्शन हेतु और कुछ तत्व ज्ञानार्थ हेतु उनसे मिलन के लिए वो क्या कर रहे थे, कहां जा रहे थे? कपिलाश्रम जा रहे थे। कपिलाश्रम कहां है? गंगा सागर के बिल्कुल गंगा सागर के तट पे, अर्थात पूरब में, एकदम पूरब का छोर हो गया, पश्चिम के छोर से पूरब के छोर में जा रहे हैं। सोचो, इसको बोलते हैं जिज्ञासु भक्त। जो चार प्रकार के भक्तों में पहला कौन सा है? आर्थ अर्थात जिज्ञासु है, जो जिज्ञासु है ये जिज्ञासु भक्त है, एक नहीं है? बिल्कुल जो है लास्ट इधर पश्चिम का, इधर सौवीर सिंधु बिल्कुल बॉर्डर आ जाता है, और इधर जो है फिर समुद्र आ जाता है आगे की साइड में, पूरब की साइड में गंगा सागर में जाकर वहां जो वहां जा रहे थे। तो जिस पालकी पर वो बैठ करके आ रहे थे तो उसका जो है एक पहिया पंचर हो गया, अर्थात एक कहार बीमार पड़ गया। अब स्टेपनी तो थी नहीं उनके पास में, कोई दूसरा कोई उनके पास में एक्स्ट्रा तो कोई था नहीं कि इमीडिएटली उसको लगा दो। अब किसी से मांग मुंग करके स्टेपनी ली तो वो तो आप समझ सकते हैं कैसा कार्य कर सकती है। वो भी बेचारी पुरानी थी तो इसलिए कोई ठीक से कार्य नहीं की। कहने का आशय है कि जिस समय वो पालकी पर चढ़ करके आ रहे थे तो इच्छुमती नदी के किनारे जो है जब आ रहे थे तो उनका जो है एक कहार क्या हो गया, बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो अब दूसरा कहार कहां से लाया जाए? तो भगवान की कुछ ऐसी व्यवस्था थी, भगवान भी देखते हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए जो लालायित है ना, तो भगवान भी उनको जो है उसी प्रकार भक्तों से मिलाप करा देते हैं, ठीक है ना। जब ध्रुव जी जा रहे थे तपस्या के लिए तो किससे भेंट हो गई उनकी? इमीडिएटली नारद जी से भेंट हो गई। ये भगवान की व्यवस्था थी, कि भगवान चाहते हैं कि भाई कितना उत्साह के साथ में उसके अंदर जिज्ञासा है, भजन करने की वो है लॉल्यूम लालसा है, तो भगवान उसकी हेल्प करते हैं। तो यहां भी जो है राजा रहुगण की इतनी, हालांकि वो राजा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास में, बहुत सारी जवाबदारी है, लेकिन सारी जवाबदारियों को साइड से रख करके भगवान कपिल देव से क्या करने के लिए जा रहे हैं? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के लिए वो जा रहे हैं। तो इसलिए अटूट उनकी जिज्ञासा है। तो बीच में ही भगवान ने देखा कहां इतना कष्ट उठाता रहेगा, इतना दूर जाएगा, तो इसलिए भगवान ने बीच में ही नजदीक ही उनकी जो है महाराज भरत से, जड़ भरत से क्या करा दिया? भेंट करा दी। तो आज का जो विशेष करके जब प्रश्न जो प्रसंग चल रहा है, इसमें एक प्रसंग चल रहा है कि जब कहारों ने महाराज रहुगण की धमकी सुनी तो वे उसके दंड से अत्यंत भयभीत हो गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे। तो कभी कभी जो है राजा को प्रजा के हितार्थ, हित को देखते हुए उसको क्या करना चाहिए, प्रजा का जो है सही मार्गदर्शन करने के लिए उसको कभी कभी दंडित भी करना चाहिए। दंड भी कल जैसे हम सुन रहे थे, एक उनके क्या नाम प्रभु जी बता रहे थे कल ना, ये एक उनका एक क्या है, एक प्रकार से जो है दया है, दया के ऊपर प्रसंग चल रहा था। तो किसी को कोई दंड दे रहा है, ठीक है ना, तो उसके दंड के पीछे क्या छुपा है?
दया ही छुपी है भाई, उनके सहारे से कारों का भी कल्याण हो रहा है कि नहीं। अरे भाई वृंदावन के जो, चलो सुअर ही सही है, बंदर भी सही है, लेकिन है तो वृंदावन में ना, है कि नहीं। तो इसलिए वृंदावन के माध्यम से उन सभी का कल्याण हो रहा है। तो सुअर बंदर तो सब जगह है, पेड़ पौधे सब जगह है, मनुष्य भी सब जगह है, लेकिन एक पाकिस्तान में है, बूचर खाने के पास में है, तो बताइए को वो भी तो, वहां भी तो लोग हैं, पेड़ हैं, बंदर हैं, सब है ना, और एक वृंदावन के, इनमें अंतर है कि नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे ही ये भी देखा जाए तो एक प्रकार की दया है, उनके ऊपर इनडायरेक्ट रूप से दया ही हो रही है। तो राजा का ये पहला कर्तव्य बनता है कि जो है प्रजा के सही मार्गदर्शन करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, कभी कभी उपदेश करना चाहिए। यदि उपदेश का समय नहीं है, प्रजा थोड़ा उच्छल होती जा रही है, तो उसको डांट फटकार करना चाहिए, है कि नहीं, थोड़ा कड़े शब्दों में उनको करना चाहिए। यदि देखा जाए कि प्रजा कुछ ज्यादा ही उत्पात मचाने वाली मचा रही है, तब फिर क्या करना चाहिए, उसको दंडित भी करना चाहिए। होता है कि नहीं होता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि राजा का एक कर्तव्य बनता है, अर्थात प्रजा के हितार्थ, रक्षा के लिए, प्रजा की भलाई के लिए उसको क्या करना चाहिए। देशे काले च पात्रे समय, देश के अनुसार, समय के अनुसार, पात्र के अनुसार, उसी प्रकार का विधान करना चाहिए। जहां उपदेश की जरूरत है वहां उपदेश दे, ठीक है ना, और जहां कुछ थोड़ा डराने ढपकाने की बात है तो कड़ी शब्दों में थोड़ा सा कठोर वचन बोले, लेकिन जहां लगता है कि ऐसे है, वो क्या बोलते हैं जो कहावत बोलते हैं ना, लातों के देव बातों से नहीं मानते, तो वहां फिर उसको दंडित करना ही चाहिए उसको। तो ये देखा जाए तो उसकी भलाई है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं हम, महाराज रुकमांगत। तो महाराज रुकमांगत जो है अयोध्या के वो राजा थे, तो उन्होंने देखा कि एकादशी व्रत के महात्म की जो महिमा उसने प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखी। उस समय वो लोग क्या थे कि एक छोटे मोटे साधन मनु का कोई विश्वास नहीं था, अरे एकादशी पालन कर लेना, सोलह माला बैठ के जप कर लेना, कोई बड़ी बात है क्या उनके लिए, क्योंकि वो लोग क्या है, उनके अंदर इतना शक्ति सामर्थ्य हुआ करती थी कि हजारों हजारों वर्षों तक बड़े बड़े कष्ट सह सकते थे, भूखे प्यासे रह सकते थे उनके अंदर, तो छोटे मोटे साधन उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते थे। तो जब जो है महाराज रुकमांगत ने देखा कि उर्वशी जो है कि उनके जो पाप, जब पुण्य जब खत्म हो गए, तो जिसके कारण पुण्य न होने के कारण जब स्वर्ग को नहीं जा सकी, तो उसके कहने से जो है एक दासी, एक सेविका, उन्होंने क्या किए, अपने पुण्यों को उस जो स्वर्ग की जो अप्सरा थी उर्वशी, उसको जो है संकल्प कर दिया, और उसने भी जो है, उस दासी ने भी कोई जानबूझ करके एकादशी व्रत नहीं किया था, वो भी जो है ऐसे कुछ हिन्न मन्नहार गोली पन्नहार, कहावत बोलते ना, हिन्न मन्नहार गोली, हिन्न को मरना था, उसका गोली चलाना हुआ, तो सीधी जाके उसी में लगी। तो ऐसे ही जो है हुआ क्या था, उनका जो मालिक था उसने डांट फटकार कर दी, जिससे उसे अन्न जल मिला नहीं, दुखी थी, तो उस दिन एकादशी, तो अनजाने में एकादशी हो गई। उसी का जब पुण्य जो है उस उर्वशी को अर्पित किए, तो उसका इतना प्रभाव हुआ, इतना प्रभाव हुआ कि इमेडिएटली उर्वशी क्या की, स्वर्ग लोक में चली गई, फटफट देखते ही उनके साथ हरि बोल करते हुए चली गई। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहां हम लोग जो है इतने सारे जो है तपस्या उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, अरे भाई कम तपस्या में अधिक फल मिले, ये अच्छी बात है कि नहीं है, बड़ी बहुत तपस्या करके फल बिल्कुल थोड़ा मिले, ये तो ज्यादा कोई बुद्धिमानी नहीं, बुद्धिमानी तो वहां है कम तपस्या में अधिक फल की प्राप्ति हो। इसलिए तुरंत राजा ने जान लिया कि वास्तव में एकादशी का जो प्रभाव है बहुत अलौकिक है, इसलिए तुरंत अपने राज्य में उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से मेरे राज्य के अंदर 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो स्त्री हैं, चाहे वृद्ध हैं या जवान हैं, सभी को, चाहे अपने ही स्वजन क्यों न हो, उन सभी को क्या करना होगा, एकादशी का पालन करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और उसका यह प्रभाव हुआ कि उस भय से सभी ने एकादशी पालन किया और जिससे क्या हुए, सारे के सारे भगवत धाम चले गए। तो ये राजा को जो है इस प्रकार क्या करना चाहिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको ये सारा जो है करना ही चाहिए। क्योंकि राजा की जो नियुक्ति होती है, कोई राजा बनता है तो वास्तव में ऐसी हल से खेलते हुए राजा नहीं बन जाता है। बड़े पुण्यों से कोई राजा बनता है, और विशेष करके राजा जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान ही किसी को राजा के रूप में उसको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, जिससे उसका जो कर्तव्य बनता है लोक विशेष की रक्षार्थ, लोक के रक्षार्थ अर्थ उसके हित के लिए वो क्या करे, ऐसे उपाय लागू करे और उसको उपायों को जो है पालन करने में प्रजा की जो हेल्प करे, सुविधा दे उनको। तो इसलिए प्रथु महाराज बोलते हैं, अहम दंड धरो राजा प्रजानाम यह योजितः रक्षिता वृत्तिदा स्वेषु सेतुषु स्थापिता प्रथ। महाराज प्रथु बोलते हैं कि हे मेरी प्रजाओ, ध्यान से सुनो, अहम दंड धरो राजा, मेरे को जो है शासन करने के लिए ही प्रजा नाम इह योजितः, प्रजा के ऊपर शासन करने के लिए ही मेरे को नियुक्त किया गया है। इसलिए मैं क्या करूंगा, प्रजा के ऊपर शासन करूंगा, और उसके लिए शासन करने के लिए या प्रजा के कल्याण हेतु, हितार्थ हेतु जो कुछ भी जरूरत है, कुछ चीज देने की जरूरत है तो मैं दूंगा, और जहां लेने की जरूरत है उनसे लूंगा भी। अर्थात उनका हित कैसे होगा ये प्रजा नहीं समझ सकती है, लेकिन मैं ठीक ठीक से समझ सकता हूं। इसलिए मैं क्या करूंगा, रक्षिता वृत्तिता स्वेषु सेतेषु स्थापिता प्रथ। अर्थात रक्षिता, राजा का पहला कर्तव्य क्या है, प्रजा की उसे रक्षा करना चाहिए। भाई प्रजा सुरक्षित होगी तभी तो कुछ करेगी, है कि नहीं, जब अपना ही ठिकाना नहीं है सुरक्षा का है, तो फिर वो क्या जो है वो व्रत अनुष्ठान कर पाएंगे, है कि नहीं। हम सुरक्षित हैं इसलिए तो दौड़ करके आ जाते हैं मंगल आरती, मालूम चलेगा कि जो है कुछ आतंकवादी छुपे हैं तो हम आएंगे इधर, बिल्कुल नहीं जाएंगे, मंदिर खाली पड़ा होगा। तो इसलिए पहला कर्तव्य बनता है राजा का, प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे, और दूसरा है वृत्तिदा, अर्थात उसकी भोजन की व्यवस्था करे। पहले एक नारा दिया गया था, रोटी कपड़ा और मकान यही चाहता हिंदुस्तान, था कि नहीं, आप लोग सुना होगा, ये तो कोई ज्यादा पुराना नारा नहीं है। तो रोटी कपड़ा और मकान उसकी व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं, व्यवस्था करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए, तो बोलो हरे कृष्णा, ठीक है, तब व्यवस्था करना चाहिए। तो उसे व्यवस्था करना चाहिए, उनको जो है कुछ जॉब देना चाहिए, कुछ उनकी उसके लिए उपाय करना चाहिए, क्या नाम है, आजीविका के लिए जो हमेशा चलती रहे। और तीसरा है सेतेषु पृथक, सेतु का निर्माण करना चाहिए। सेतु से क्या करते हैं, हम नदी के इस किनारे से उस किनारे पर जाते हैं कि नहीं, सेतु का काम क्या है, दो किनारों को जोड़ देना। तो ऐसे ही सेतेषु स्वेषु सेतेषु पृथक, अर्थात पृथक मतलब जो प्रजा है, जिस जिसका जैसा जैसा स्वभाव है, जैसा जैसा आचरण है, उसके लिए क्या करना चाहिए, सेतेषु कुछ उसको जो है नियम बनाना चाहिए, अर्थात इस पार से उस पार जाने के लिए एक सेतु का निर्माण करना चाहिए, अर्थात भगवत धाम जो भौतिक जगत से भगवत धाम जाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, कुछ नियम कानून स्थापित करना चाहिए। ए वाली बात है, पहला है रक्षिता, रक्षा करना, दूसरा है जो वृत्तिदा, उनको जो है कुछ आजीविका के लिए, कुछ खाने पीने की व्यवस्था के लिए परमानेंट चलती रहे तो उनको कुछ जॉब देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, या उनको कुछ पर्सनली घर में कोई बिजनेस व्यापार ऐसा कुछ कर सकते हैं उसकी वो करना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये तो हो गया धर्म अर्थ काम, ये तीन चीज तो ये है ही की हो गए, लेकिन अंत में मनुष्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का भगवत प्राप्ति। केवल खाओ पियो मौज करो इसी से काम नहीं चलेगा, कब तक खाओ पियो मौज करो, आप खाओ पियो मौज करो वो मौज करने ही नहीं देगा, है कि नहीं? उसको जब बीमार पाना है तो बीमार डाल देगा, है कि नहीं? जो भी कष्ट देना होगा, खाने की इच्छा है, बहुत खाना भी रखा है लेकिन पेट अलाउ नहीं कर रहा है, पेट की हालत खराब पड़ी है अंदर से, होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए खाओ पियो मौज करो, ये तो जिसने बोलना था तो बोल दिया, वो चला गया, हो सकता है वो था है नहीं अभी लेकिन हमें उसके ऊपर चलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? हमें जो है सोचना चाहिए कि कब तक खाओ पियो मौज करोगे, एक दिन तो जो है लगाम लगेगी ही इसके ऊपर। तो इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए सबसे जो उत्तम जो तरीका है वो है वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था करना। वैदिक धर्म का प्रारंभ में होता है वर्णाश्रम धर्म से, ये समझ लेना चाहिए। भगवान भी गीता में क्या बोलते हैं, धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामी युगे योगे, संभवामी युगे योगे, हर युग युग में मैं अवतार हो लेता हूं, प्रकट होता हूं, किसके लिए, धर्म संस्थापन अर्थाय। तो ये धर्म क्या है, मानव समाज के कल्याण हेतु वर्ण और आश्रम की स्थापना करना, वर्ण और आश्रम के अनुसार उनके कर्तव्यों की स्थापना करना, अर्थात वर्णाश्रम विभाग की स्थापना करना, ये भगवान का सर्वप्रथम जो है उद्देश्य रहता है। जिससे क्या होता है, स्वे स्वे कर्मण्य अवरित सम सिद्धि लभते नरः, स्वे स्वे कर्मणि अविरत, तो अपने अपने कर्म में जब वो लग जाते हैं, ब्राह्मण 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 के कर्तव्य का पालन करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय के कर्तव्य का पालन करेगा, वैश्य वैश्य के कर्तव्य का पालन करेगा, शूद्र शूद्र के कर्तव्य का जब ठीक ठाक से जब पालन करेंगे तो सम सिद्धि लभते नरः, फिर प्रजा क्या करेगी, सम्यक सिद्धि मिलेगी, अर्थात ब्राह्मण का भी कल्याण होगा, क्षत्रिय का भी कल्याण होगा, वैश्य का भी कल्याण होगा और शूद्र का भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, है कि नहीं? पर राजा तो जो है सबका एक पिता होता है ना, पिता पिता के तुल्य है ना राजा, तो सबका, जैसे पिता जो है अपने पुत्र की, चाहे वो बुद्धिमान है उसकी भी वो देखभाल करता है, और मूर्ख है, कभी कभी कोई मूर्ख होते हैं तो हमने देखा कि उनको भी बेचारे बहुत करते हो, देखा जाए तो बुद्धिमान की इतना राजा हेल्प, वो क्या नाम है, पिता नहीं देखता जो मूर्ख के जितना, उसको तो साथ में ही लेकर के चलता है, हर जगह साथ में लेकर के चलता है। तो इसलिए हर संसार में चलो आए हैं तो एक शूद्र का भी कल्याण होना चाहिए, ठीक है ना, उसके कर्म के अनुसार तो यहां आ गया, लेकिन अब उसको क्या ऐसी चांस दिया हमने जिससे शूद्र में भी रह करके और जिस लक्ष्य को ब्राह्मण प्राप्त कर सकता है उस लक्ष्य को शूद्र प्राप्त कर, तो उसके लिए जो है राजा को क्या करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म की जो है व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो धर्म का शीलन करता है, धर्म का जो आचरण करता है, भगवान उसको बहुत लायक करते हैं। आप देखो स्वयं भगवान भी जो है धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, जैसे शास्त्रों में कहा जाता है कि स्त्री अवध्य है, स्त्री का कभी भी बद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वही भगवान जब कंस के नाम है कृष्ण के रूप में आए तो सबसे पहले शुरुआत कहां से की, पूतना राक्षसी से की थी, एक राक्षसी थी। और भगवान राम ने शुरुआत कहां से की थी, ताड़का नाम राक्षसी एका। चूंकि धर्म की रक्षा के लिए भगवान जो है कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं, हमारे ऊपर नियम लागू होते हैं, भगवान के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो है क्या करते हैं, धर्म को कैसे जो है रक्षा किया जाए उसके लिए हर कदम उठाने के लिए जरूरत होती है। कोई अपने मामा का वध करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, चाहे कितना भी मामा जो है खराब हो, कितना भी कंजूस हो, ज्यादा कंजूस तो ठीक नहीं लगता है भांजे को, क्यों वो देखता है कि भविष्य में मामा से बहुत काम लेना है। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं सुना कि अपने मामा को ही जो है मार करके रख दे, चलो वो भी सोचता है चलो ज्यादा नहीं तो कुछ तो देगा। भाई द्वार पे आ जाना मामा का, ये बहुत बड़ी एक मतलब उसने लाज रख दी, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई तुम्हारा मामा कैसा था। लेकिन उस भगवान को देख लो, मामा जब ज्यादा उत्पात कर रहा था तो भगवान ने मामा कंस को ही जो है उसको मार दिया, मार दिया कि नहीं मार दिया, क्यों मार दिया, क्योंकि जहां धर्म की बात आती है तो भगवान बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते उसके साथ में, बिल्कुल पनिशमेंट इमीडिएटली उसको पनिशमेंट देते। और भाई की बात आती है, देखो बिल्कुल सगा भाई, सगा के मतलब मामा फूफी के ही है, तो शिशुपाल का उन्होंने वध कर दिया कि नहीं कर दिया। तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए जो जीव धर्म के प्रति जो दृढ़ है, सचेत है, भगवान का वो प्रिय, बहुत प्रिय बन जाता है। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्मो रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म क्या करता है, रक्षतः, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप सभी सुने होंगे जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे, वनवास काट रहे थे और लास्ट था अज्ञातवास एक साल का, तब जब घूमते घूमते और जब द्वैत वन में पहुंचे अर्थात काम्य वन में पहुंचे तो एक दिन उनको बहुत प्यास लगी। अब वनवास तो जो है यहां तो हम बोतल भर के ही चलते हैं, चाहे नल के हम बिल्कुल पास ही खड़े हैं फिर भी हमारी बोतल पास में रहती है, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ है नहीं, जहां मिल जाता है पानी पी लेते हैं, नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए उनके पास में कोई भी है, प्यास लगी लेकिन पानी दूर कोसों कोसों दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बड़े तड़प गए सब, सबको बहुत प्यास लगी। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भाई पानी कहां मिलेगा, तो एक पेड़ पे चढ़ गए और उन्होंने देखा कि थोड़ा दूर जो है जंगल के अंदर कुछ हरे हरे हरियाली दिखाई दे रही है, कुछ हरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, कुछ पक्षी भी वहां दिखाई दे रहे हैं, हरियाली भी दिखाई दे रही। तो उन्होंने कहा कि अवश्य इस स्थान पर क्या हो सकता है, जल हो सकता है। देखो पहले लोग कितना, पहले लोगों के पास में बड़ी बुद्धि है, बहुत बुद्धिमान होते थे। हमने देखा है पहले कोई घड़ियां नहीं होती थी, लेकिन एग्जैक्ट वो टाइम बता देते कि एक समय हो गया होगा। हम जब घर में थे तो कभी कभी हम जो है अपने चाचा के साथ में जाया करते थे गाड़ी पे, तो पत्थर लेने के लिए जाते थे, हमारे खान बहुत खान तो है, तो जब घर बनना तो पत्थर लेने के लिए जाते थे, और रात को एग्जैक्ट उनको टाइम की मालूम चल जाता, लगभग 2:30 बजे वो जगा देते थे, क्योंकि थोड़ा दूर था खाने, तो हम जाते तो हमें तो जो है उस समय नींद आती थी, लेकिन उनको जो है बिल्कुल नींद नहीं आती, एग्जैक्ट जग करके और तुरंत जो है उनको मालूम था कि इतने, तो हम सही समय पर प्रत्येक दिन जहां पहुंचना है सही समय पर, प्रत्येक दिन सही समय पर पहुंचते थे और रिटर्न भी सही समय पर हो जाते थे हम जो है। तो पहले लोगों का जो है एक आइडिया कितना परफेक्ट हुआ करता था, और पहले हमने देखा कि बैलों को भी कितना ट्रेंड हो जाते थे, एक बार दो बार उस रास्ते को दिखा दो हम देखते थे, वो भी कभी कभी मैं देखता था वो सोते रहते थे, मैं तो सोता ही रहता था, लेकिन वो भी सोते रहते, तो बैल क्या करते थे सीधे जिस रास्ते से गए हैं, जैसे उनको कितना रटा हुआ है उसी रास्ते से जाएंगे, उसी रास्ते आ जाएंगे, कोई हांकने की जरूरत नहीं, कोई जो है उनको इधर उधर मोड़ने की जरूरत, अपने आप परफेक्ट। तो इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कोई पानी है, जलाशय है, तो उन्होंने नकुल से कहा, भैया नकुल देखो जाओ तुम पानी भर के लाओ। तो नकुल सबसे छोटे थे, तो नकुल जब गए, जब पानी पीने लगे तो जो है तुरंत आवाज आई है कि पानी पीने से पहले जो है इस कुंड पर, इस सरोवर पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है, ये सरोवर मेरे अधिकार में है, इसलिए तुम बिना मेरी अनुमति के पानी नहीं पी सकते हो। यदि पानी पीना है तो क्या करना होगा? मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन उस समय उनको बहुत प्यास लगा था, कौन इतना सोचे कि क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने पानी पिया, जिसका परिणाम हुआ इमीडिएटली वो सेंसलेस, बिल्कुल जो है क्या मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़े। जब कुछ समय हो गया तो नहीं आए, तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने सहदेव को भेजा, वो भी गया, लेकिन सेम हालत जैसी उसकी हुई, सेम सहदेव की हुई है, उस वो भी जो है बिल्कुल वहां डेड हो गया। भगवान ने अर्जुन को भेज सॉरी युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा और लास्ट में भीम को भेजा, लेकिन कोई जाते तो सब थे लेकिन पानी वापस लेकर के कोई नहीं आता था। अंत में युधिष्ठिर महाराज गए हैं, और जैसे पहले तो देखे कि सब मरे पड़े हैं, उन्होंने कहा इनको तो बाद में देखूंगा, पहले ऐसा ना हो कि इनके साथ साथ मेरा भी हरि बोल हो, इसलिए वो पानी पीने के लिए हुए तुरंत जो है। फिर उनके पास में अब आ जाए, रुको महाराज आप पानी पीने से पहले, क्योंकि एक कुंड जो है मेरे अधिकार में है, इसलिए आप कुछ लेना चाहते हैं तो परमिशन लो पहले मेरे से, और मैं जब परमिशन दूंगा मेरे प्रश्नों का आप क्या करेंगे, ठीक ठीक उत्तर देंगे, तो मैं जो है तुम्हें पानी की अनुमति दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ भाई अधिकार तो तेरे में है, और किसी दूसरे की वस्तु को कभी भी जो है जबरदस्ती नहीं छीनना चाहिए। यदि कोई जबरदस्ती करता है उस वस्तु को लेने के लिए, तो उसका पनिशमेंट उसे भोगना ही होता है। ये बिल्कुल नियम है। आजकल लोग कोई किसी का भी कुछ भी लेने के लिए तैयार है, छीना झपटी मची हुई है। लोग ये नहीं देख रहे कि भाई इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। आप देखो हर चीज में लोग इतना दूषित कर दिया है, हर वस्तु को मिलावट डाल डाल करके कि जीना ही मुश्किल कर दिया है कि नहीं है? कोई भी चीज ऐसी संसार में नहीं बची जो बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट शुद्ध हो। पहले तो लिखा रहता था शुद्ध, तो मतलब हम विश्वास कर लेते थे शुद्ध है, लेकिन आजकल तो लिखा तो रहता है शुद्ध, लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपका आपका सरोवर है, आपका अधिकार है, इसलिए आप पूछिए, मैं क्या प्रश्न का आपके उत्तर दे सकता हूं। तो उन्होंने प्रश्न किए और कई सारे प्रश्न किए, तो उन्होंने जो है ठीक ठीक से उत्तर दिए, तो यक्ष बहुत प्रसन्न हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रश्नों से बहुत उत्तर वो प्रसन्न हूं, आपने बहुत सही सही उत्तर दिया है, तो इसलिए आप चाहते हैं तो एक को आप जिंदा कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? एक व्यक्ति को जिंदा कर सकता हूं आपके तीन चार भाइयों में से। तब उन्होंने कहा कि जो है आप नकुल को, मेरा नकुल भाई है छोटा, उसको जिंदा कर दो। तो यक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम भाई नकुल को क्यों जिंदा कराना चाहते हो? अरे भविष्य में अभी कुछ ही समय में ये जो है युद्ध होने वाला है, आपको जो है युद्ध के लिए बलवानों की जरूरत पड़ेगी, आप भीम को ले लो, भीम को जो है जिंदा करा लो, आप जो है क्या नाम है अर्जुन को जिंदा करा सकते हो, नकुल को जिंदा क्यों कराना चाहते हो? तब उन्होंने कहा कि देखो ये जो सुख और दुख, राज्य का सुख और वनवास का दुख, ये जो संसार के अंदर सुख और दुख है, ये तो हर व्यक्ति के पास में अपने कर्म के अनुसार आएंगे ही आएंगे। चाहे आप किसी को भी जिंदा कराओ या किसी को भी मत कराओ, हमारे साथ में कौन है और उसका जो है परिणाम, हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम हमें भुगतना ही होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है नकुल को ही जिंदा करो। तो फिर यक्ष ने बोला ठीक है, तुम नकुल को क्यों चाहते हो? तो उसने फिर महाराज युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो मेरी दो मां है, एक माता कुंती है और दूसरी माता माद्री है, तो कुंती से मैं जीवित हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि माद्री का भी एक बच्चा क्या होना चाहिए? जीवित रहना चाहिए। मैं उनके साथ में कभी भी जो है पक्षपात नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूं उनका एक बच्चा जो है जीवित होना चाहिए, एक हमारी मां से है, इसलिए दोनों ही माताओं को मैं सनाथ देखना चाहता हूं, अनाथ नहीं देखना चाहता। तो यक्ष बहुत प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे सारे भाइयों को क्या कर देता हूं, जिंदा कर देता हूं। तो इसको बोलते हैं कि यदि हम धर्म के पथ पे चलते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षतः, यह धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा। तो इसलिए शास्त्रों में जो बात कही है, मतलब जो राजा का स्पेशली जो कर्तव्य है, राजा को देखना चाहिए कि समाज के अंदर जो है हर व्यक्ति वर्णाश्रम के अनुसार अपने अपने कार्यों में ठीक से एंगेज है या नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम आपनोते न सुखम न पराम गति। अर्जुन, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य है, जो शास्त्रों की विधि को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। शास्त्र क्या है, भगवान की ही वाणी है, भगवान के उपदेश है। भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान हमारे लिए क्या उपदेश देना चाहते हैं, ये कैसे हम जानेंगे। लोग कहते हैं जी भगवान का तो हमारे पास कोई वो नहीं है, मैसेज नहीं, हम क्या करें। अरे भगवान थोड़ी आकर के आपको कहेंगे कि भाई तू पढ़ो आ ई ओ, भगवान ने ऑलरेडी पहले से शास्त्र दे दिए हैं। तो इसलिए भगवान का आदेश क्या है, कैसे हम जानेंगे, तो शास्त्रों के अनुसार जानेंगे। भगवान क्या चाहते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अविरतः सम सिद्धि लभते नरः, अर्थात जो शास्त्र के आदेश की अवहेलना करता है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः वर्तते, केवल अपनी इच्छा अपने मन में आई बस वो काम कर लिया। मेरा मन तो ऐसे बोलता है, मैं तो ये करना चाहता हूं, अरे वो क्या कर रहा है जाने दो, मेरे मन में तो ऐसी आती है, तो मेरे मन में ऐसी आती है वो चलने वाला नहीं, हमारे मन की कैसी आती है वो नहीं चलने वाला, भगवान के मन में कैसी आती है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। यदि भगवान के मन के विपरीत हम चलेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, न स सिद्धि म आपनोति। यदि हम शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं, शास्त्र की मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं तो न स सिद्धि म आपनोति, मनुष्य जीवन की सिद्धि है कृष्ण भावना मृत तक पहुंच जाना। बिना जो है धर्म के मनुष्य कैसा है, पशु के समान, धर्म विहीनाम पशु ही समान। तो इसलिए मनुष्य जब आया है संसद उसको क्या करना चाहिए, पशु से उठ करके कम से कम मनुष्य स्तर पर पहुंच जाना चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम आर्य हो, आर्य का मतलब होता है आर्य और अनार्य। आर्य बोलते हैं जो अपने लक्ष्य को ठीक ठीक से समझते हैं, और अनार का मतलब होता है जो अपने लक्ष्य को नहीं मानते हैं, वो तो पशु ही समाना। तो जो अनार्य हैं, जो भगवान के आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो न स सिद्धि में आपनोति, उनको जीवन में कभी भी सिद्धि हासिल नहीं हो सकती, न सुखम, और सिद्धि नहीं तो सुख भी नहीं, केवल खाओ पियो मौज करने से सुख नहीं मिलता है, वो तो सुख का नाम केवल सुख है, वास्तव में ही देखा जाए तो सबसे बड़ा दुख है कि नहीं दुख। लोग खा रहे हैं पी रहे हैं मौज कर रहे हैं, तो वास्तव में वो तो समझ रहे हैं कि हम बड़ा आनंद ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में आने वाला उसका परिणाम कितना भयंकर है वो उसको नहीं देख पा रहे। तो ना सुखम, इस जीवन में सुख नहीं मिलेगा तो दूसरे जीवन में तो सुख की उम्मीद ही छोड़ देना चाहिए, और ना पराम गति, और पराम गति परागति भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो शास्त्र की विधि का जो परित्याग करता है तो भगवान बोलते हैं कि उसकी जो है न तो सिद्धि मिलेगी, न संसार में सुख मिलेगा, ना ही उसको भगवत प्राप्ति हो सकती। तो क्या होगा भाई उनका, तो उनका होगा तान अहम दुषित क्रूरान संसारेषु नराधमान।
छिपा में अजस्र अश्वान आसुरी एव सयो निसु।
क्या परिणाम होगा उनका? तान अहम दुषित क्रूरान संसारे सुनराधमा। ऐसे क्रूरों को, ऐसे जो है पशु वृत्ति वाले मनुष्यों को मैं क्या करता हूं, बार 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 मैं क्या करता हूं, नरक योनियों में फेंकता रहता हूं। संसारेषु नराधमान, नर अधमान, जो सबसे नीच नीच जो शरीर है, नीच नीच योनियां हैं, उनके अंदर में बार बार फेंकता रहता हूं। इसलिए राजा को चाहिए अपनी प्रजा को जो है डांट करके, उपदेश दे करके, क्या नाम है, उनको दंडित करके, जैसे भी हो उसको क्या करना चाहिए, ठीक ठीक से मार्ग पर चलाना चाहिए। अर्थात उसे परम गति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए भी वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना चाहिए, और उसके द्वारा उनको जो है वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान को प्रसन्नता प्रसन्न करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सिद्धि है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, आप लोग कोई पूछना चाहेंगे कुछ? आप सभी वैसे प्रसन्न हैं, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महाप्राण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमनंदे।